वीणा के अच्छे स्वभाव से सास ससुर व देवर भी बहुत प्रभावित थे। देव के पिता श्री राम का स्वभाव वैसे भी घर में सबसे अच्छा था। सबका भला चाहने वाला श्री राम सुबह से शाम तक घर में होते हुए भी अनुपस्थित सा रहता था। न बेटों के काम में दखल अंदाजी करना और न ही घर के किसी काम में, बस सुबह शाम पूजा के अतिरिक्त दिन भर अपने आस पड़ोस पीछे दुकानदारों का हाल चाल और अपने रिश्तेदारों के दुख सुख की नियमित रूप से खबर लेते रहना श्री राम की दिनचर्या थी। कृष्णा थोड़ी स्वभाव की चिड़चिड़ी थी, लेकिन वीणा के अच्छे स्वभाव के कारण और घर में देव व अमित के दबदबे के कारण वह वीणा से मधुर संबंध बनाए हुए थी। लेकिन उसके मन में इस बात की जरा भी कोई शंका नहीं थी कि उसका पुत्र वीणा के मामले में कहीं कम है। वह अपनी बातों से यही महसूस करवाती थी वीणा को कि देव शुरू से ही शादी की तड़क भड़क के खिलाफ था और रिश्तों के लिए भी कोई कमी नहीं थी। बस वह शादी तभी करना चाहता था कि जब तक अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए। रिसर्च के बाद 2 साल तक कोई नौकरी नहीं लगी थी उसकी। स्कॉलरशिप के सहारे वह अपनी शादी का ख्याल नहीं ला सकता था। दूसरे उसके भाग्य में तकलीफ लिखी थी। बीमारी से पीछा छूटा तभी वह शादी के लिए माना। कृष्णा की जिंदगी अपने घर की 4 दीवारी में ही कटी थी। उसे नहीं मालूम था कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। उसके बच्चे उसकी आंखों के सामने भले चंगे खड़े हैं, तो वह समझती थी सारी दुनिया भली है। उसके बच्चों को कोई दुख है तो उसको लगता था सारी दुनिया में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वीणा अपनी सास के ज्ञान की सीमा को समझती थी, तभी उसे उसकी किसी बात का दुख नहीं होता था। आखिर वह अपने बेटे की शुभ चिंतक थी और वीणा को देव का हर शुभ चिंतक अपना लगने लगा था, क्योंकि देव उसका सुहाग था। अपने सुहाग की मंगल कामना ही उसका प्रथम कर्तव्य बना हुआ था। शादी से पहले उसने स्कूल से 2 महीने की छुट्टी ले ली थी। सारी योजना उसने सोच समझ कर बनाई थी। 2 महीने बीतते ही गर्मी की 2 महीने की छुट्टियां हो जाती थी। कुल मिलाकर 4 महीने उसे देव के साथ मिल रहे थे। एक दूसरे को समझने के लिए इतना समय काफी होता है। उसे विश्वास भी था कि इस बीच वह केंद्रीय विद्यालय संगठन से अपनी दिल्ली में बदली करवा लेगी। ऐसा ही किया देव ने। उसकी बदली के लिए भी दौड़ धूप शुरू कर दी थी। उधर वीणा की सास को एक ही बात आजकल करने को रहती थी। जब भी वीणा उनके पास बैठती, यही सुनने को मिलता उसे, हमारे समय में तो पहला बच्चा शादी के 1 साल के भीतर हो जाता था। देखो मेरी मानो, तुम भी यही करना। कोई गोली खाने के चक्कर में ना पड़ जाना। जल्दी से मुझे दादी बना दो। तुम अपने स्कूल आराम से जाती रहना, बच्चे को मैं संभाल लूंगी। यह सुनकर वीणा मुस्कुरा भर देती। कैसे बताती अपनी सास को कि अभी तो किसी अप्राकृतिक साधन की उसे जरूरत ही नहीं पड़ी है। अभी तो शरीर का संपर्क केवल सहलाने भर का है और वह भी उसी में ही अपना मन लगाए है। वक्त आएगा, सब ठीक हो जाएगा। जरूरत है अभी देव को तनाव मुक्त रहने की। देव तनाव में रहता था अक्सर। शाम बीत जाने के बाद एकाएक उसे लगने लगता था कि जैसे रात आते ही उसे वीणा के सामने परीक्षा देनी होगी और वह उस परीक्षा में स्वयं को समय आने से पहले ही असफल पाता। हाँ, किताबें पढ़नी शुरू की थी उसने, ढेर सी किताबें पढ़कर उन पर अमल करने की कोशिश भी की थी। वीणा ने सदैव उसका साथ भी दिया, लेकिन देव अपना संयम समय से पहले ही खो देता था। इन किताबों के सहारे ही वह जान पाया और सदा कोशिश भी करता था कि वीणा को वह अपने स्पर्श से कुछ राहत दे सके, और वीणा वह इसी स्पर्श की दीवानी बनी देव के लिए घंटों प्रार्थना करती थी। उसने अपना ध्यान शारीरिक संपर्क से हटा रखा था, जो मिल जाता था उसी में ही संतुष्ट रहने वाली थी वह, और ऐसे व्यक्ति को सुख की परिभाषा बहुत सरल लगती है। यही सुना था उसने अपने घर में पिता के मुख से कि सुख साधना है, सुख आराधना है, सुख मोल लिया नहीं जाता, सुख वही रूप जो हम पहचाने, जो हो रहा है उसमें सुख खोजो, जो दुख लगता है उसमें सुख खोजो। यह गीता भाव उसके मन प्राणों में बसा था और उसी भाव में वह जीना सीख रही थी। ऐसे ही वक्त बीतता जा रहा था। अमित के जीवन में बहार आ गई थी। देव की शादी के बाद उसे अपनी जिंदगी में नई खुशियां दिखने लगी थी। वीणा भाभी का दीवाना था वह। निम्मी और मालती भाभी का साथ तो उसे बहुत कम मिलता था। दोनों ही अपनी अपनी गृहस्थी में इतनी व्यस्त थी कि साल में जब जब भाई छुट्टी पर आते तभी चंद दिनों का साथ उसे अपनी भाभियों का मिल पाता था। ऐसे में उससे जो बन पड़ता वह उनकी तीमारदारी में लगा रहता। घर का छोटा सबसे इसी में खुश रहता था कि वे सब जब भी आती, अमित ये लाओ, अमित वो लाओ, अमित मेरे साथ बाजार चलो कहकर उसे इतना महत्व देती हैं जैसे उसके बिना हर किसी की दिनचर्या अधूरी रहती है। ऐसे में वीणा को भाभी के रूप में अपने आसपास देखकर वह बहुत प्रसन्न था। वैसे भी वीणा उसे अपनी दूसरी भाभियों से बिल्कुल अलग लगी। एक तो वह देव की पत्नी थी, देव जो उसके मन के बहुत निकट था, देव जो आज उसे खुश दिखता था, देव को उसने कष्ट सहते देखा था, बहुत करीब रहा वह उसके उन क्षणों में, देव की एक एक कराहट उसे याद है। ऐसे में अपने भाई देव के चेहरे पर वीणा के आ जाने से जो खुशी उसे देखने को मिली उसी ने उसे वीणा का दीवाना बना दिया। वीणा अच्छी है, बहुत अच्छी है, इससे अधिक वह भी वीणा के दिल को नहीं जान पाया कि उसका दिल तो देव की मंगल कामना में लगा रहता है, उसके मन की थाह लेना कठिन था। हमें जिस बात की खबर होती है उसी की सोचते हैं, अपने मन की गहराइयों में सदैव वही बात घर करती है जो स्वयं से संबंधित हो। अपना मन ठीक है तो लगता है दूसरे का मन भी ठीक होगा। अमित को वीणा के चेहरे पर सुख भाव ही दिखते थे और ऐसे में वह उसके भावों में अपने प्रति स्नेह भाव ही पाता था। वीणा को उससे बात करना अच्छा लगता है, वह वीणा से हरदम बात करने को तत्पर रहता था। सुबह काम पर जाने से पहले नित्य वह वीणा से एक ही प्रश्न पूछता था, भाभी जा रहा हूँ, किसी चीज की जरूरत हो तो बताना, शाम को लेता आऊंगा, या फिर कि भाभी जा रहा हूँ, भाई को पूछ लेना, नाइट शो पिक्चर जाना हो तो टिकट लेता आऊंगा। ऐसे में वीणा मुस्कुराकर यही कहती, मैं तो पिक्चर जाने को हरदम तैयार रहती हूँ, अपने भाई से स्वयं पूछ लो, जाना चाहेंगे तो मुझे क्या ऐतराज होगा। वीणा को देहरादून से माँ का पत्र आता, शाम को लौटकर उसे यह खबर भी अपनी माँ से मिल जाती थी। यही पूछने की चाह होती उसकी कि माँ ने प्रिया के बारे में कुछ लिखा है या नहीं, और प्रिया का पत्र जब आता तो उसकी कोशिश रहती कि वह उसके लिखे शब्दों को पढ़ ले, कहीं शब्द अपना रूप बदलकर उसका नाम भी लिखा दिखा दे। प्रिया के लिखे एक दो पत्र उसने बहाने से पढ़े भी थे, यही कहकर कि भाभी मुझे दिखाइए प्रिया का पत्र, देखूं उसकी लिखाई को, मैं उसके भविष्य के बारे में बता दूंगा। और वीणा हंसते हुए उसे पत्र दिखा देती थी। मन ही मन समझने लगी थी कि अमित कहीं ना कहीं किसी रूप में प्रिया को पसंद करता है, वह उसके लिखे शब्दों में अपना रूप खोजता है, लेकिन प्रिया के पत्रों की इबारत में उसे ऐसा कुछ ना दिखाई देता, कहीं भी अपना नाम ना लिखा मिलता। कुछ अक्षरों को मिटाकर, कुछ अक्षर जोड़कर भी अपना नाम नहीं बना दिखता था। वीणा को भी अमित के मनोभावों की खबर लगनी शुरू हो गई थी। प्रिया के प्रति उसकी उत्सुकता देखकर वह समझ रही थी अमित के मन में बस रही प्रिया की भावनाओं को। अमित सर्वगुण संपन्न लगा उसे, प्रिया के प्रति उचित वर, लेकिन ऐसा सोचकर वह परेशान भी हो जाती थी। देव के साथ उसके विवाह से अब तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन कहीं कुछ हो गया तब। लेकिन क्षण भर में उसके संस्कार उसे इससे अधिक सोचने को रोक देते थे। देव को अब कुछ नहीं हो सकता, देव अब बिल्कुल ठीक है, उसे अब कुछ नहीं होगा, और ऐसे में अमित का इस सब से क्या लेना, वह तो बिल्कुल ठीक है, उसकी अपनी भी तो जिंदगी है, सबकी था लेने वाला अपनी पत्नी को कितना खुश रखेगा। इसकी कल्पना करते ही प्रिया का खिला चेहरा उसकी आंखों में उतर कर उसके दिल में समा जाता। प्रिया अमित को पाकर जीवन में बहुत खुश रहेगी, उसके लिए अमित ही अच्छा वर है। घर वालों के प्रति वह निश्चिंत भी थी, उन्हें देव की पिछली जिंदगी का नहीं पता, देव ठीक रहेगा तो उन्हें कुछ पता भी नहीं लगेगा, और देव ठीक रहेगा अब, ऐसा उसका मन कहता है, ऐसी ही उसकी कामना है। अमित को वह देव से अलग करके देखने लगी, अमित के गुण उसे देव से भी ऊपर लगने लगे। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने अपने दम पर अपना व्यापार शुरू किया था, और वह दिन रात मेहनत करके ऊपर ही उठ रहा था, दिन भर काम में व्यस्त रहता, शाम को अपने परिवार के लिए सुख साधन जुटाने में व्यस्त रहता। शादी से पहले वीणा को व्यापार करने वालों की दिनचर्या का ज्यादा आभास ना था। अमित की दिनचर्या देखकर उसे लगा कि नौकरी पेशा से अपना व्यापार करने वाले 20 ही होते हैं, उन्हें सब सुख साधन जुटाने में कोई परेशानी नहीं होती। ऐसे में वीणा ने अपने हर पत्र में सबकी कुशलता के विषय में लिखने के साथ साथ अमित के बारे में, उसकी दिनचर्या के बारे में, उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर दिया। माँ को तो वह लिखती ही थी, प्रिया को भी थोड़ा बहुत लिखने लगी, लेकिन प्रिया को अपनी दीदी के मन में अपने प्रति बसती जा रही चाहना की खबर नहीं लग पाई। वीणा के पत्रों की इबारत में अमित का नाम, अमित की प्रशंसा पढ़ पढ़ कर वह अमित के विषय में सोचती जरूर थी, लेकिन ऐसा कभी भी उसके मन में विचार नहीं आया था कि उसकी दीदी अमित व उसका संबंध बनाने की सोच रही है। हाँ, वीणा दीदी के पत्र पढ़कर छोटी बहन गीता जरूर उससे चुटकी लेते हुए कहती थी, वीणा दीदी अपने हर पत्र में अमित के विषय में ढेर सारी बातें लिखती है, कहीं उनका मन तुम्हें अपनी देवरानी बनाने का तो नहीं? ऐसे में प्रिया मुस्कुरा भर देती थी, लेकिन यह सिलसिला जब हर पत्र में चलने लगा तो उसके मन ने भी अमित की कल्पना से सुखद अनुभूति का अनुभव करना शुरू कर दिया। लेकिन मन की बात उसने अपने मन में ही रखी, किसी को इसकी खबर ना हुई। ऐसे में कुछ दिन और बीते और प्रिया का जन्मदिन आ गया। अपने कॉलेज की सखियों को उसने शाम को चाय पर बुला रखा था। दोनों बहनें सुबह से ही सब तैयारी में जुटी थी। दोपहर की डाक से प्रिया के नाम दो शुभकामना संदेश आई। एक कार्ड देव व वीणा का था और दूसरा अमित का। अमित का कार्ड मेरे नाम? सुखद आश्चर्य हुआ उसे। यही सोचा उसने, जरूर वीणा दीदी ने बताया होगा उसे मेरे जन्मदिन का, और मुस्कुरा दी। वह ऐसा सोचकर गीता ने देखा तो मां से कहने लगी, मम्मी देखो अमित ने भेजा है प्रिया को कार्ड। चलो अच्छी बात है, वीणा ने बताया होगा उसे। आश्चर्य हुआ दोनों को मां के मनोभाव जानकर। मां को अमित अच्छा लगता था, यही बोली, अच्छा लड़का है, लेकिन प्रिया को कितना अच्छा लगता है यह भी तो देखना होगा। गीता ने यह कहते हुए प्रिया को चुटकी काटी, चल पागल कहीं की, कार्ड को देखकर बात कहां की कहां ले गई। प्रिया ने उसे प्यार से झड़कते हुए कहा, लेकिन मन ही मन वह खुश हो रही थी। उसे समझ आ रहा था कुछ कुछ पत्रों में अमित के विषय में बातें लिखने का अपनी वीणा दीदी का इरादा। देव व वीणा के कार्ड को उसने ड्राइंग रूम में सजा दिया और अमित के कार्ड को अपनी एक पुस्तक में रख लिया। लेकिन गीता उसे छेड़ती रही दिन भर। प्रिया थी कि उसकी बातें सुनकर मुस्कुराती रही, बोली कुछ नहीं मुख से। अमित के प्रति कोमल भाव पनपने लगे थे उसके मन में। बार बार वह अमित के लिखे शब्दों को मन ही मन गुनगुना रही थी। उधर अमित बहुत बेचैन था। आज प्रिया का जन्मदिन है, उसे कार्ड मिल गया होगा, उसी के विषय में ही सोच रहा था। कैसा लगा होगा उसे कार्ड देखकर। वीणा भाभी से छिपाकर भेजा था उसने, जानता था वीणा भाभी को मालूम पड़ जाएगा। क्या सोचेगी, कुछ सोचेगी, कैसा सोचेगी, इसी की कल्पना किए जा रहा था। शब्द भी ढूंढ रहा था मन में वीणा के किसी प्रश्न के उत्तर में, लेकिन शब्द थे कि वीणा के लिए उत्तर खोजने की अपेक्षा प्रिया के नाम की माला जपे जा रहे थे। तब उसने प्रिया के नाम एक कविता लिख डाली। आश्चर्य हुआ उसे, ये कैसे हो गया, शब्द एकाएक कैसे कविता में ढल गए, ये कैसे शब्दों का रूप एकाएक निखर आया। प्रिया किसी के मनोभावों का बिंब, किसी की आंखों का उल्लास, किसी के हृदय का कण कण अथा उमंगों का दर्पण। मुख मूक मगर अधरों पर मुस्कान लिए, चेहरे पर उल्लास की आभा, आंखों में एक प्रीति लिए। किसी से नेह का नाता जोड़े, किसी से चिंतन का है साथ, किसी की आंखों की है ज्योति, किसी के जीवन की प्रभात, प्रतिपल नवीनता के दर्शन, नित नई उमंगों से मिलन, प्रिया तुम मेरा जीवन, जीवन की उत्कट उमंग। बहुत अच्छा लगा उसे कविता लिखकर, बार बार उसे पढ़ता, पढ़ पढ़कर मन ही मन खुश होता। जी चाह रहा था उसका पंख लगाकर उड़ जाए प्रिया के पास और उसे सुना आए अपनी कविता, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता था वह। यह समझकर उदास हो गया, बस अपनी डायरी में कविता लिखकर उसे ही पढ़ता रहा। अब रोज डायरी में अमित प्रिया के नाम कुछ ना कुछ शब्द जोड़ने लगा। उसे सुखद आश्चर्य हुआ कि ये शब्द स्वयं एक कविता में ढलकर सामने आ जाते थे। जैसी उसके मन की स्थिति होती थी, वही अपनी लेखनी से प्रिया के नाम लिख डालता था। ऐसा करके उसे लगता जैसे प्रिया से वह बातें कर रहा है, जैसे प्रिया उसके सामने बैठी है। चाह होती कभी इतनी कि वीणा भाभी से कह डाले अपने दिल का हाल। ऐसे में एक दो बार उसने कोशिश भी की, लेकिन कह ना पाया। फिर उसने अनजान बनते हुए अपनी डायरी को ऐसी जगह रखना शुरू कर दिया जहां वीणा की नजर उस पर आसानी से जा सकती थी, लेकिन फिर भी वीणा को नहीं पता लगा। वीणा ने डायरी देखी जरूर, पर उठाकर देखने की कोशिश नहीं की। आदत नहीं थी उसकी किसी की निजी डायरी को देखने की।